रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है।
ओम शांति। यूं निकल पड़ा हूं सफर में मैं, मुझे मंजिलों की तलाश है, नए रास्ते नए आसमां नए हौसलों की तलाश है। यूं निकल पड़ा हूँ सफ़र में मैं, मुझे मंजिलों की तलाश है, नए रास्ते नए आसमां नए हौसलों की तलाश है, जहाँ बंदिशों की हो हद ख़त्म, उस हसी शहर की तलाश है, जहाँ रंग व खुशबू का हो मिलन, मुझे उस उफक की तलाश है, जहाँ बंदिशों की हो हद ख़त्म, उस हसी शहर की तलाश है। जीवन खोज है, अ क्वेस्ट, एक प्यास। नए रास्तों की, नए आसमां की, नए हौसलों की, जहां बंदिशों की हो हद खत्म, उस हसी शहर की तलाश है, उस हसी सुबह की तलाश है। जहां रंग और खुशबू का हो मिलन, रंग और खुशबू दोनों मिल रहे उस उफक की, उस क्षितिज की तलाश है। द सर्च ऑफ दैट होराइजन। इस जीवन का लक्ष्य है परम सत्य को पाना, और परम सत्य बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को पाने के लिए बुद्धि भी कैसी हो, सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की यह यात्रा है जहां पहुंचना है। गहराई में जाना, ऊंचाई में जाना, सूक्ष्मता में जाना, और ये सारे ही अज्ञात क्षेत्र है, अनचार्टेड। इसलिए थोड़ा सा डर भी है और रहता है। गहराई, ऊंचाई और सूक्ष्मता, when much in the woods as a little girl I was told that snake would bite me, that I might pick a poisonous flower or mushroom, or the goblins would kidnap me, but I went along and met none but angels. मैं छोटी बच्ची थी और किसी ने कहा कि वहां नहीं जाना, वहां जाओगे तो भूत मिलेंगे, वहां जाओगे तो सांप तुमको काटेगा, वहां ना जाना, वहां जाओगे तो पॉइजनस मशरूम मिलेंगे, वहां ना जाना, वहां पर बहुत खतरा है। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं जाती गई, जाती गई, जाती गई, एंड मेट नन बट एंजल्स, बट फरिश्तों के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं, कोई नहीं मिला। छोटी सी कविता है। भीतर भय है, और भय से मुक्ति का मार्ग क्या है, बढ़ते जाओ, करते जाओ, भय खत्म होते जाएगा। तो 1974 की अंतिम दो मुरलियां, भाग एक और भाग दो, यहां पर 74 की 31 मुरलियां पूरी हो रही है, जिसमें 7 मुरलियों पर सबने टेस्ट दी और बची हुई ये मुरलियां आज पूरी हुई। कल से 75 की मुरलियां, 76 की। तो ये मुरली बहुत रहस्यों से भरी हुई है। इसमें सारा सूक्ष्म वतन का वर्णन है, पर जो दूसरा भाग है उसमें बस एक ही प्रश्न है कि मुख्य लॉ कौन सा है रूहानी सेना का। छोटी सी और एक ही लॉ, न खुद के शरीर को देखो, ना दूसरों के शरीर को देखो, दैट्स इट। बस एक ही लॉ है, सबसे तगड़ा, सबसे शक्तिशाली। पांच तत्वों का आकर्षण, पांच तत्व, इस आकर्षण से मुक्त होना, ये सबसे महीन पुरुषार्थी पुरुषार्थ है महारथियों का। तो ये अंतिम दो मुरलियां है, फिर 74 को हम पूरा करके कल से 76 चालू करेंगे। तो इस मुरली में बहुत सारे रहस्य हैं। कौन से रहस्य? सूक्ष्म वतन के रहस्य। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन है या नहीं है? सूक्ष्म वतन कहाँ है? सूक्ष्म वतन हमेशा है, स्थाई है जैसे परमधाम है, या अस्थाई है? ब्रह्मा का क्या पार्ट है? अव्यक्त वतन, अव्यक्त ब्रह्मा का पार्ट क्या है? अव्यक्त वतन का जो ब्रह्मा है वह अव्यक्त क्यों हुआ? ब्रह्मा के कर्तव्य क्या है? बाप दादा अमृत वेला क्या क्या करते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर इस मुरली में। पर इस मुरली को समझने से पहले एक और मुरली है जो समझनी होगी, जो इस मुरली से जुड़ी हुई है। सेकंड 69, 2 फरवरी 69। तो वो तो पूरी हो गई पार्ट टू। एक ही लॉ है रूहानी सेना का, रूहानी मिलिट्री का, रूहानी आर्मी का, रूहानी योद्धे का, स्पिरिचुअल वॉरियर का। लॉ कौन सा है? न तो स्वयं की देह को देखो, ना दूसरों की देह को देखो। देह में सूक्ष्म तत्व है और ये सूक्ष्म तत्व आत्मा को आकर्षित करते हैं। माइंड और मैटर, सारा खेल इन दोनों का है और ये दो किस तरह इंटरैक्ट करते हैं ये समझना है। और इन दो की के बीच की सबसे सूक्ष्म कड़ी जो है वो है सेंसेशंस, संवेदना। सारा एडिक्शन, आत्मा को शरीर से जो प्यार है, स्वयं के या किसी और के, वो किस आधार पर है? संवेदना के आधार पर, सूक्ष्म सेंसेशंस के आधार पर। सारा खेल संवेदना का है। संवेदना क्यों प्रकट होती है? उसके भी कई कारण हैं। एक कारण है मौसम। संवेदना अर्थात क्या? ठंडी, गर्मी, पसीना, दुख, दर्द, पीड़ा, खुजली, सुन हो जाना। तो कुछ सूक्ष्म संवेदनाएं, कुछ स्थूल संवेदनाएं, धड़कना, फड़कना, धड़कन, फड़कन, सिहरन, दबाव, ये सब संवेदनाएं, बहुत पसीना आना, ये सारी संवेदनाएं। अपने शरीर पर हो रही संवेदनाओं को जानना, पहचानना, उसके अनित्य स्वभाव पर चिंतन करना, ये ज्ञान और योग, आत्मा और शरीर, माइंड और मैटर को समझने की एक मिसिंग कड़ी है। क्योंकि आत्मा को जो इतना प्यार है शरीर से, वो क्यों है? क्योंकि ये सेंसेशंस दो प्रकार के, सुखद दुखद, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, प्रिय अप्रिय, सूक्ष्म और सूक्ष्म, स्थूल क्लियर अनक्लियर, स्पष्ट अस्पष्ट, न्यूट्रल। तो आत्मा जहां सुखद उत्पन्न हो जाता है, प्लेजेंट प्रिय, वहां पर उसको लगा हो जाता है राग, और जहां अनप्लेजेंट है वहां द्वेष, डिसलाइक, घृणा। हमारे जो भी एडिक्शंस है, जितने विकार है आत्मा के, मुख्य तो विकार असंख्य है, फिर 5, और 5 में भी मुख्य केवल 2, राग और द्वेष। जो अच्छा है उसके प्रति राग, और जो अच्छा नहीं है उसके प्रति द्वेष, और ये प्रकट होता है शरीर के तल पर। इसलिए विकार इतने जल्दी निकलते नहीं है, क्योंकि हम सारा कार्य कॉन्शियस माइंड पे करते रहते हैं, सबकॉन्शियस में हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस में पहुंचने की भाषा हमें पता नहीं। और वो आलंबन, वो टूल है सेंसेशंस। कल हमने एक देखा था श्वास। श्वास विकारों से जुड़ा है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। श्वास को देखते रहो, श्वास को देखते देखते विकारों को देखने लगोगे। दूसरा, सेंसेशंस को देखते रहो, सेंसेशंस को देखते देखते विकारों तक पहुंचोगे, गहराई तक। और जहां कोई विकार, कोई सेंसेशन नहीं है, उसको भी देखते रहना। क्यों काम विकार से छूट नहीं पाती आत्मा? क्यों? बुद्धि के तल पर तो समझ लिया है, काम नरक का द्वार है, दुख देता है, अनुभव भी हो चुका है, फिर भी नहीं छूट पाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और विषयों की टक्कर होती है, उस टंकार से एक संवेदना उठती है, और वो संवेदना, वो सेंसेशन सुखद है, ऐसी सुखद अनुभूति है कि वो एडिक्शन उस सुखद अनुभूति का है, उस व्यक्ति के शरीर का नहीं, उस व्यक्ति के स्पर्श का नहीं। स्पर्श तो डॉक्टर और पेशेंट का भी होता है, मां और बच्चे का भी होता है, वहां विकार नहीं उठता। ये सुखद अनुभूति सबकॉन्शियस में, मन की गहराइयों में स्टोर हो जाती है, और एडिक्शन इस अनुभूति का है कि वो अनुभव चाहिए। जब साकार मन कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब्ड है, उसे सुख चाहिए, थक चुका है, आराम चाहिए, रिलीफ चाहिए, बहुत स्ट्रेस में है, विकार की याद आती है, क्योंकि वहां एक सुखद अनुभूति है। तो एडिक्शन उस अनुभूति का है, उस प्लेजेंट सेंसेशन का है। इसीलिए अभ्यास ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस शरीर को देखते रहो, अपने मन को घुमाते रहो, और हर संवेदना अस्थाई है, भंगुर है, अनित्य है, इसका चिंतन हमें समता की ओर ले जाएगा, स्थिरता की ओर ले जाएगा। दर्द हो रहा है ना, चला जाएगा, थोड़ी देर है बस। सुखद अनुभूति हो रही है ना, थोड़ी देर है, चली जाएगी। अशरीरीपन का अनुभव हुआ, केवल तरंगे, पर वो भी अनित्य है, थोड़ी देर रहेगा, फिर से देहभान आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ भी नित्य नहीं है, इसका निरंतर चिंतन हमें धीरे धीरे सुखद और दुखद दोनों ही संवेदनाओं की तरफ समता भरा चित्त निर्माण करेगा, तो ही हम विकारों से मुक्त हो सकते, अन्यथा नहीं। इसलिए ये दोनों अभ्यास, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन और बॉडी स्कैनिंग, अत्यंत महत्वपूर्ण है राजयोग के इस साधना में, साक्षी भाव के इस साधना में, ये लिंक है। तो इस मुरली में ये सारे प्रश्न उठे हैं। तो पहले हम देख रहे थे वो, न स्वयं के शरीर को देखो, ना दूसरों के शरीर को देखो। बाबा ने उससे भी ऊपर कह दिया है, आवश्यकता ही नहीं है देखने की, नजर नीचे, नजर नीचे, जहां नजर जाती है वहां शक्तियां बहती है। इसलिए उन नियम मर्यादाओं की अब भी आवश्यकता है, और साथ साथ इन संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विकार न स्त्री देखता है, न पुरुष, न बहन, न भाई, न किसी संबंध, न किसी स्थान, न कोई समय को उसको बताए, उसे तो बस वो अनुभूति चाहिए बस, और वो अनुभूति सेकंड की है, बस वो चाहिए, और उसी अनुभूति के पीछे वो विकर्म कर बैठता है। वो 5-10 मिनट का विकर्म है, और जीवन पूरा कारागार में बीत रहा है। क्या उन्हें पता नहीं जो सजा काट रहे हैं जेल में, पर परवश हो जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इस सेंसेशंस के प्रति आसक्ति है। लोग 6-6 मास रिहैब सेंटर में रह के आते हैं, उसके बाद फिर पीना चालू करते। 6 मास वहां रहने के बाद, 6 मास ना मोबाइल, ना कोई इंटरनेट, ना किसी रिश्तेदार से मुलाकात, 6 मास सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या बनी हुई है, एक्सरसाइज, पुनर्वसन केंद्र में, रिहैब सेंटर्स में एक्सरसाइज होती है, लेक्चर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, स्थूल काम होता है, परिवार वालों को मिलने नहीं देते हैं, इतनी मोटी तगड़ी फीस देनी पड़ती है हर मास की, 30-30, 40-40 हज़ार, और फिर सब कुछ करके वहां से आता है और उसके दूसरे दिन ही पीना चालू करता है। क्या है वो एडिक्शन? उस दारू का है ही नहीं, वो एडिक्शन उस तंबाकू बीड़ी सिगरेट का है ही नहीं, वो एडिक्शन उस चरस गांजे का है ही नहीं, वो एडिक्शन है डोपामिन इफेक्ट, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। वो लेने के बाद यहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स पूरे शरीर में, तन बदन में सुखद अनुभूति कराते, सुखद संवेदना। एडिक्शन उस संवेदना का है, प्लेजेंट सेंसेशन का है, सुखद संवेदना, प्रिय संवेदना। ये सबसे गहरी खोज है विकारों के छूटने की, सबसे मिसिंग लिंक। मन का सूक्ष्म ऑपरेशन करना है, डीप ऑपरेशन। हम जो भी कुछ कर रहे हैं सब कॉन्शियस माइंड पर कर रहे हैं, सारे समान, सारा अमृत वेला, सारी मुरली, सारा चिंतन, सब बुद्धि विलास, ऊपर 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 ऊपर। सूक्ष्म वन, सूक्ष्म अवचेतन तक पहुंचना है तो और गहरा जाना होगा, श्वास का आधार लेना पड़ेगा, संवेदना का आधार लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आत्मिक स्थिति में आओ। तो इस मुरली में ढेर सारे प्रश्न हैं, अमृत वेला बाप दादा के कौन से कर्तव्य है, 1, 2, 3, 4, 5, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा का पाठ क्या है, 1, 2, 3, स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पाठ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था के 6 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर जो कहा। इस मुरली को समझने पहले एक और मुरली समझनी होगी और वो है 2 फरवरी 1969 की। सूक्ष्म वतन को समझने की सबसे पावरफुल मुरली, पहला प्रश्न सूक्ष्म वतन है या नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भाई कई बार कहा है सूक्ष्म वतन है ही नहीं, साकार महावाक्य है बाबा के कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, क्यों ऐसा कहा। अच्छा, फिर बाबा जब चले गए 69, 18 जनवरी तो कहाँ चले गए, सूक्ष्म वतन में चले गए, तो गए कहाँ, तो अब सूक्ष्म वतन कहाँ से आया। तीसरा, सूक्ष्म वतन कहाँ है, किन तत्वों से बना हुआ है, सूक्ष्म वतन में क्या होता है, क्या सूक्ष्म वतन स्थाई है या अस्थाई है, परमधाम जैसा स्थाई है, सूक्ष्म वतन कब बनता है, क्या सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन के द्वारा जाएगी वाया या डायरेक्ट परमधाम जाएगी, क्योंकि आते समय तो डायरेक्ट आई, क्या जाते समय भी डायरेक्ट जाएगी या वाया जाएगी, और वाया जाएगी तो सूक्ष्म वतन में क्या कर कर जाएगी। ये सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है सूक्ष्म वतन है या नहीं। मुरली की तरफ चलते हैं। 2 फरवरी 1969, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी है और वह पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो, इसका भी राज है, क्यों कहा गया था। इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल अच्छी भी होती है लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो बच्चों से क्या कहा जाता है, वह चीज उसकी आंखों से छिपाकर यह कह दिया जाता है कि है ही नहीं, इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है, एक्स्ट्रा लगन, वह कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए हैं तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाए तो वह चीज खत्म हो जाती है, नहीं, यह भी एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की, तो यह भी युक्ति है। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहां लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा गया? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते हो? तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है। तो सबसे पहला प्रश्न था सूक्ष्म वतन है या नहीं है, उत्तर है। लेकिन पेट, तो पहला प्रश्न है कि नहीं है, उत्तर है। तो क्यों कहा नहीं है? क्योंकि यज्ञ के शुरुआत में जो पाठ चला था वो ध्यान का पाठ चला था, लंबा लंबा समय ध्यान में चले जाते थे, कई कई दिनों तक ध्यान में चले जाते थे, दिन रात ध्यान में ही रहते थे, निष्ठा ध्यान। और फिर एक दिन बाबा ने हिस्ट्री हॉल में एक संडली में एक भाई को बिठाया, एक बहन को बिठाया और कहा जाओ सूक्ष्म वतन में, एक घंटा तक सूक्ष्म वतन में थे। तब तक बाबा ने परमधाम से आके मुरली चलाई और फिर पूछा बताओ मुरली में क्या था। वो दोनों कहने लगे हमको पता ही नहीं। तो बाबा ने कहा देखो ये बच्चों को पता है, ये तो खेल पाल है, ये तो टाइम वेस्ट है, जब परमधाम से भगवान आ रहा है और इन्होंने वो सुना ही नहीं और ये क्या कर रहे थे, इनका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। सूक्ष्म वतन का पाठ, ध्यान का पाठ खत्म। क्योंकि चटक गए थे, एक्स्ट्रा लगन लग गई थी कि हमें भी भेजो, हमारी भी रस्सी खींचो, हमको भी देखना है क्या होता है। ये संदेश यह जाती है, ये भोग लगवाते हैं, ये वहां से संदेश लेकर आती है, हमको भी लेके आना है। तो ये क्या है? तो पहला प्रश्न सूक्ष्म वतन है, पर साकार ने कई बार कहा है कि है ही नहीं। तो क्यों कहा? क्योंकि ये इसकी वजह से। और जो ध्यान में जाते थे प्यू का पाठ, वो भी कहां चले गए? उसमें भी माया आ गई, फिर हमें मम्मा आती है, हमें बाबा आते हैं, ये वो सारा। तो प्रश्न पहला सूक्ष्म वतन है कि नहीं है, उत्तर है। आगे हम कैसे जाए सूक्ष्म वतन, उत्तर। लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है, यही बाप दादा की बच्चों से आश है। आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किसमें है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते और कमाई के लायक बनाते हैं, इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहते रहे। अब समझा कि क्यों कहा था और कब कहा था। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव के अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। किसको अनुभव करो? सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करो। ये आश नहीं रखो कि हम सूक्ष्म वतन जाए और देख के आए वहां है क्या, ये आश नहीं रखो कि आना कब जाए कैसे जाए। बाबा ने कहा यही सूक्ष्म स्थिति बनाओ। अगला, सूक्ष्म वतन में हम क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा नीचे, ऊपर उसके ऊपर विष्णु और ऊपर शंकर, ये क्या है? ये तीन स्थितियों का नाम है। ब्रह्मा वह स्थिति का नाम है जो साकार में भी है और ऊपर ब्रह्मधाम में भी है दोनों। विष्णु उस स्थिति का नाम है जिसमें ऊपर की ओर लगाव ज्यादा है परमधाम की ओर। शंकर वो स्थिति का नाम है जिसमें इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, सर्वोच्च अवस्था, उसे पेट का भी ख्याल नहीं है। किसी मुरली में था, वो शंकर वाली स्थिति ब्रह्मा की भी अंतिम स्थिति है, तपस्वी संपूर्ण तपस्वी स्थिति है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उस सूक्ष्म स्थिति को बनाना, अर्थात इस शंकरपुरी में पहुंचना। विष्णु वाली स्थिति बीच में दिखाई। अगला, क्या सूक्ष्म वतन स्थाई है या अस्थाई है? सूक्ष्म वतन अस्थाई है, स्थाई नहीं है। स्थाई क्या है? परमधाम, क्योंकि सूक्ष्म वतन है नहीं है। अगला प्रश्न, क्या सूक्ष्म वतन कोई भौगोलिक व्यवस्था है? क्या एरोप्लेन से वहां पहुंचा जा सकता है? नहीं। अगर देखा जाए तो मन के संकल्पों की ही वो स्थिति है, रचना है। सूक्ष्म वतन मन के संकल्पों की ही रचना की अवस्था है। अगला प्रश्न था कि आत्माएं परमधाम में डायरेक्ट जाएगी या सूक्ष्म वतन वाया? तो सूक्ष्म वतन से जाएगी। किस लिए सूक्ष्म वतन जाएगी? बचे हुए हिसाब किताब को चुकतू करने। आत्मा कहां जाएगी? सूक्ष्म वतन, बचे हुए हिसाब किताब चुकतू करने। पहले सूक्ष्म वतन जाएगी, वहां हिसाब चुकतू होंगे, फिर परमधाम जाएगी। अगला प्रश्न, क्या ब्रह्मा अकेला परमधाम जाएगा? ब्रह्मा सृष्टि की एकमात्र आत्मा है जिसने शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लिया है। इस सृष्टि की एक ही आत्मा है जिसने शरीर तो छोड़ा पर बाद में पुनर्जन्म नहीं लिया। बाकी सब, मम्मा दादिया सब, सब ने पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म से मुक्त इस समय केवल एकमात्र ब्रह्मा की ही आत्मा है, और वो भी लंबे समय तक। क्यों? उसका भी उत्तर यहां आया है इन 5 पॉइंट्स में। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता की 6 विशेषता है, उसके 6 पॉइंट्स है जो हम देखेंगे। इस मुरली तो अभी चालू ही नहीं की है। अगला प्रश्न जो अभी पूछा कि किसके साथ जाएंगे, कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है। वही मुरली, 6 फरवरी 1969, आज इस मुरली को गहराई से स्टडी करना। 2269 2 फरवरी 1969 प्रश्न, कई बच्चों के मन में प्रश्न, यह भी प्रश्न है, ना मालूम जो बाप दादा कहते हैं सभी को साथ ले जाएंगे। अब वह तो चले गए, लेकिन वह गए कहां? मुक्ति धाम में तो नहीं जा सकते ना, सिवाय बारात वो बच्चों के। बारात के बिकार अकेले जा सकते हैं? बारात तैयार है, यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलना है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण रहस्य। अब तो स्थापना का कार्य कहां चलना है? अव्यक्त रूप से सूक्ष्म वतन में चलना है। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर साथ चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है ना? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। श्री कृष्ण अकेला आएगा क्या? गोप गोपिया चाहिए? श्री कृष्ण की कितनी रानियां दिखाई है? 16108। वो कौन है? हम सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, दरिद्र सुदामा पोहे लेकर, पोहा लेकर आता है। श्री कृष्ण स्वागत करते हैं, अवगत करते हैं, अंदर बिठाते हैं, अपनी रानियों को बुलाते हैं कि ये ब्राह्मण है और हमारा कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों को के सामने झुकना, उन्हें वंदन करो और हे सुदामा तुम आशीर्वाद भी दो। रुक्मिणी आती है, अष्टपुत्र सौभाग्य वैभव। फिर दूसरी आती है, सत्यभामा आती है, और वो आने ही लगती है। तब तक सुदामा भव फिर इतना थक जाता है कि अब केवल भव भव कितनी हो गई? वो कहते अभी तो केवल 1000 हुई है, टोटल है 16000। वो कहते अब नहीं होता है मुझसे, अब तो केवल भव 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 करते है। फिर कृष्ण समझ जाते, कहते तुम लोग अब एक साथ ही आशीर्वाद ले लो। तो क्योंकि ये भी भक्ति की कहानी है श्री कृष्ण की। तो एक है 8 आत्माएं, दूसरी है 108 आत्माएं और तीसरा है 16,108 आत्माएं। ये सारे कैलकुलेशन सतयुग के। तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ ये आत्माएं भी आएगी। तो ब्रह्मा बाप क्या कर रहा है, वतन में ठहरा हुआ है। वो एक ही आत्मा है सृष्टि की जिसने पुनर्जन्म नहीं लिया है। 18 जनवरी को 69 में शरीर छोड़ा, आत्मा कहां गई, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में आत्मा ठहरी हुई है। सूक्ष्म वतन अस्थाई है। सूक्ष्म वतन कहां है, परम धाम और पांच तत्वों के बीच में। तो परम धाम का रंग और पांच तत्वों के रंग, ये दोनों जहां मिक्स होते हैं एक नया रंग बनता है। यहां दो रंग जहां मिक्स करो तो बीच में एक नया रंग बनता है ना। तो सूक्ष्म वतन लाल लाल नहीं है जैसे परम धाम है, और सूक्ष्म वतन में इन पांच तत्वों के भी रंग नहीं है। ये दो रंग यहां मिल रहे इसलिए मिक्स्ड यहां है। सूक्ष्म वतन में शरीर कैसा है, शरीर भी सूक्ष्म। शरीर में सूक्ष्म वतन में खाना, भूख, प्यास, ये सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। लाइट का शरीर है वहां पर, ब्रदरियन ब्रदरियन भी नहीं, ब्रेथ की भी आवश्यकता नहीं है वहां। प्राणा भी नहीं है, प्राणा कहां, हमने प्राणा का कहां बोला, प्राण कहां है, ये पांच तत्व प्राणिक ऊर्जा यहां पर है, यहां तो वो भी नहीं है। सो तो आत्माएं तो क्या ब्रह्मा बाबा परम धाम चला गया, तो ये भी प्रश्न उठता है कर्मातीत बन गया है, नहीं, क्योंकि कर्मातीत की जगदीश भाई जी ने 18 परिभाषाएं बताई है एक क्लास में, उसमें से एक परिभाषा है कि आत्मा शरीर को छोड़कर जब परम धाम जाएगी तो परम धाम की जो अवस्था है वो है कर्मातीत। ये भी उसकी एक परिभाषा है। अर्थात ब्रह्मा की आत्मा रुकी हुई है सूक्ष्म वतन में क्योंकि अभी पूरे काम हुआ नहीं है, पूरे कर्तव्य पूरे हुए नहीं है, वो भी हम इस पॉइंट में देखेंगे। पूरे कर्तव्य अभी हुए नहीं है तो ब्रह्मा की आत्मा वही रुकी हुई, इसलिए मुरली में बार बार आता है ब्रह्मा आह्वान कर रहा है। ब्रह्मा के पास बाप दादा भी नीचे आते हैं, फिर प्रकृति आती है, समय पूछता है, माया, ये सब आते रहता है। तो डेट फिक्स करो, ये सब आते रहता है ना। एडवांस पार्टी की भी आत्माएं आती है, बाप दादा से कहती है वगैरह वगैरह। तो साथ ही जाएंगे तो क्या कहा, साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है, साथ चलेंगे और साथ साथ रहेंगे और फिर साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों को भी वायदा है तो बाप का भी वायदा, बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। सूक्ष्म वतन किन तत्वों से बना हुआ है, परम धाम, ये धरती पांच तत्वों की बनी हुई है, सूक्ष्म वतन किससे बना है लाइट से बना हुआ है, और परम धाम किससे बना हुआ है, वो तो लाइट भी नहीं है वहां, लाइट है या नहीं, वाइब्रेशंस, केवल वाइब्रेशन। सूक्ष्म वतन संकल्पों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर कितने हैं, एक या असंख्य, असंख्य है। संकल्प जिस तरह है उस तरह का उस समय सूक्ष्म शरीर, अभी हर संकल्प का एक सूक्ष्म शरीर है, तो जितने संकल्प उतने सूक्ष्म शरीर। तो जब जैसी जो अवस्था है, अवस्था बदल रही है, सूक्ष्म शरीर बदल रहे, कभी काले काले सूक्ष्म शरीर, कभी सफेद सफेद, कभी दाग वाले, कभी बहुत स्वच्छ। प्रसेनजीत राजा महावीर से मिलने आते हैं और बीच में देखते हैं महावीर के आश्रम से पहले ही एक योगी है, तपस्या में लीन है एकदम बिल्कुल। महावीर से वो पूछते हैं कि इन्होंने अगर अभी अभी शरीर छोड़ा तो क्या होगा। महावीर कहते हैं अगर अभी इस राज, वो जो तपस्वी कर रहा है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो पहले राजा था, अभी तपस्वी बना है, सब राजपाट छोड़ के संन्यास दीक्षा ली है, अगर इसने अभी अभी शरीर छोड़ा तो क्या होगा। महावीर कहते हैं ये सीधा नरक में जाएगा। वो राजा कहता है ऐसे, इतनी कठोर तपस्या, थोड़ी देर के बाद वो राजा उसको देख के फिर आते और फिर पूछते, अगर इसने अभी शरीर छोड़ा तो क्या होगा? वो कहता है वो सीधा स्वर्ग जाएगा। वो कहता है ये क्या कह रहे हो, अभी तो आपने कहा इसने शरीर छोड़ने के बाद नर्क जाएगा और अभी कहते हो शरीर छोड़ने के बाद नर्क जाए, पहले कहा नर्क और अभी कहते हो स्वर्ग, हाउ कम? वो कहते हैं वो राजा जो था वो जब तपस्या कर रहा था और जब तुमने प्रश्न पूछा तो उसी समय उसको किसी ने पूछा, उसको बताया किसी ने कि तुमने जो राजपाट छोड़ दिया और संन्यास लिया उस राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया है। तब ये सोचने लगा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे भी तो अपने राज्य को बचाने जाना है। तो बुद्धि राज्य की तरफ चली गई सारा कुछ छोड़ने के बाद भी। और फिर अगले ही क्षण उसे एक स्मरण आ गया कि मैं तो संन्यासी हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये लौकिक चीजों से मुझे मुझे क्या। और तब तुमने दूसरा प्रश्न पूछा कि अब ये कहां जाएगा। चेंज हो गई थी मनस्थिति, सूक्ष्म वतन सूक्ष्म शरीर बदल रहे हैं। अभी यहां क्लास में बैठे है सूक्ष्म शरीर अलग है, कमरे में जाओगे सूक्ष्म शरीर अलग, बाबा के कमरे में अलग, सेवा में अलग। और जब कोई निंदा करता है अपमान करता है ग्लानी करता है कल की मुरली, तब चेंज हो जाती है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर बदलते जाता है, सूक्ष्म शरीर की रचना संकल्प से होती है, इसलिए सूक्ष्म वतन की भी रचना संकल्पों के आधार पर है। सारा कारोबार संकल्पों के आधार पर चलता है वहां, और परम धाम में संकल्पों के आधार पर नहीं चलता क्योंकि परम धाम में संकल्प भी नहीं है। तो क्या आत्मा में संपूर्ण पवित्र आत्मा जब बनती है, क्या वास्तव में संपूर्ण पवित्र बनती है, तो फिर द्वापर से वापस विकर्म वाले संस्कार क्यों प्रकट होते? क्योंकि सब कुछ गहराई में रहता है, मर्ज हो जाता है एकदम डीप में। इसलिए द्वापर से जैसे आत्मा नीचे आती है, परम पहले देवता सतयुग में है त्रेता में है, फिर देवताओं में विकर्म कहां से चालू हो गए? वो बीज तो वहां पर है जो प्रकट होने लगता है, खुलते जाता है फिर। तो परम धाम में भी ये प्रश्न अभी सोचने जैसा है, क्या है वहां पर, क्या वहां पर भी विकर्म या पाप मर्ज रूप में रहता है बहुत सूक्ष्म में? क्योंकि अगर नहीं रहता तो यह सृष्टि का खेल कैसे चलेगा फिर? आत्मा संपूर्ण पवित्र ही है तो वो पूरा 5000 साल सतयुगी रहना चाहिए फिर। संपूर्ण पवित्र है फिर ये फिर इमर्ज कहां से होता है? क्योंकि जो चीज है वही निकलेगी, जब नहीं है तो कहां से निकलेगी? ये चिंतन का विषय है कि आत्मा संपूर्ण परम धाम में आत्मा की संपूर्ण पवित्र अवस्था है, ठीक है सत्रु। या तो ये कह सकते हैं कि आत्मा की एनर्जी कम कम हुई और फिर द्वापर से कम कम होती गई, एनर्जी खर्च हुई ना, मोबाइल 100% है, अब यूज नहीं किया 100% ही है पर फिर भी 85% हो गया, कुछ भी नहीं किया तो भी शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा की एनर्जी कम होने लगती है, पुनर्जन्म कारण है। आत्मा अगर सिम मोबाइल के बाहर है तो पैसे खर्च बिल्कुल नहीं होंगे, जैसे उसमें सिम घुसा आत्मा जैसे ही शरीर बदला, पुनर्जन्म एक कारण है वो विकर्मों की स्टार्टिंग का। आत्मा सतयुग त्रेता में कौन से पाप किए आत्मा ने जो उसकी स्थिति नीचे उतर रही है? पाप नहीं किए पर पुनर्जन्म लिया है, बस यही कारण है। पुनर्जन्म ही आत्मा के गिरने का कारण है, इसलिए तो भक्ति मार्ग में क्या गायन चला कि जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूटो, यही तो लक्ष्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, कब तक मां के गर्भ में जाते रहूंगा? ये जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति, ये है भक्ति मार्ग का लक्ष्य और उसी को मोक्ष कहा गया है। और बाबा ने कहा मोक्ष है ही नहीं, ऐसे झटके दिए संगम पर, सारी पुरुषार्थी मोक्ष के लिए कि मोक्ष मिल जाए परम पद को पालू। और ये मानते भी है कि बुद्ध को निर्वाण पार निर्वाण चले गए, निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई सारे कर्मों की, सब खत्म हो गया, अभी जन्म नहीं। और एक शब्द है उकीर्णा, निर्जरा उकीर्णा, अब पुनर्जन्म नहीं, ऐसी मान्यता है भक्ति मार्ग में। तो इस मुरली में आते हैं अव्यक्त वतन में, कौन शिव बाबा क्या करते हैं, बाप दादा क्या करते हैं। तो पांच कर्तव्य, पहला जो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल या कोई भी रजो प्रदान कर्म अल्पकाल के लिए आत्माओं द्वारा होते रहते, उनका भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के फल देना। वैसे बाबा देते नहीं है, अपने आप मिलता है। किसी ने बाप दादा से यह भी प्रश्न पूछा था, द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं वो आप कराते हो? बाबा कहते ना मैं बहुत बिजी रहता हूं, आई एम बिजी ऑल द टाइम। बाबा ने कहा नहीं, मैं साक्षात्कार नहीं कराता, आत्माओं को साक्षात्कार ऑटोमेटिक होते हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिया तिना देख ही तैसी। हनुमान का भक्त है, हनुमान हनुमान हनुमान, अब नहीं प्रकट होगे तो गला काट दूंगा, हनुमान प्रकट हो जाते, बोलो क्या चाहिए। हे देवी मैं गला काट दूंगा, हे मां, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे राम। राम जी के भक्त के सामने कृष्ण प्रकट हो जाए तो उसे पसंद नहीं आता। यहां तक कि वो राम की जी की मूर्ति और कृष्ण की मूर्ति एक साथ है, और इधर धूप जलाओ तो अगर कृष्ण के मुंह नाक में वो डाल दो कपास, ताकि इसकी सुगंध धूप की उसको ना जाए, क्योंकि हम भक्त राम के हैं। तो सबसे पहला काम इस मुरली में बाबा ने कहा है कि वो फल देता है कर्मों के अनुसार। दूसरा कर्तव्य अमृत वेला, भक्तों की जो भावना है उस भावनाओं का फल देना और साक्षात्कार कराना। पर डायरेक्ट जब बाबा से पूछा गया था तब बाबा ने कहा था मैं नहीं कराता, अपने आप होते, परंतु हमेशा ज्यादा ये कहा हुआ है। तीसरा, कल्प पहले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में हमको वो निमित्त बनाता है उन आत्माओं तक पहुंचाने के लिए, तीसरा कर्तव्य। चौथा, वैज्ञानिकों को क्या करता है कि देखरेख करता है पुरानी दुनिया को समाप्त करने अर्थ, उनको निमित्त बनाता है, उनकी देखरेख कि मतलब देखता है अच्छे बॉम्ब्स बनने चाहिए, ताकि मतलब क्या है ज्यादा लोग एक साथ मरे, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मैं थोड़ी ना आया, तुमने बुलाया है, पर तुमको पता था तुमने बुलाया किसको, तुमने महाकाल को बुलाया, अब मरो। मैं आया हूं तुम सब की आत्माओं को लेने, शरीरों को जलाकर आत्माओं को ले जाने मैं आया हूं। ये पांचवा चौथा कर्तव्य। और पांचवा कर्तव्य उसका, ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजित बनने में हिम्मते बच्चे मदते बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने का कर्तव्य। तो बाप दादा के अमृत वेला के ये कर्तव्य, बाप दादा भी तो अमृत वेला कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं? पहला, जो कर्म करते हैं लोग रजोगुनी कर्म, उसका वो फल देता है। दूसरा कर्तव्य, भक्तों की जो भावना है उस अनुसार उनको फल देता है, उनको साक्षात्कार कराता है। तीसरा कर्तव्य, जो निमित्त बच्चे हैं जो दूसरी आत्माओं तक उनको पहुंचना है, वो ढूंढने में उनको काम मदद करता है, जो कल्प पहले वाली आत्मा है। पांचवा चौथा कर्तव्य, जो वैज्ञानिक है देखता है उनकी बुद्धि को अच्छी अच्छी टचिंग्स हो, पावरफुल बॉम्ब्स बनाए, विनाश की तैयारी में उनको प्रेरणा देना। और पांचवा कर्तव्य, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको मदद करना। तो ये बाप दादा के पांच कर्तव्य। अगला, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा के पाठ में तीन बातें, पहला स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, और तीसरा स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता उसको। इसलिए इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति आ गई, दूसरा स्वयं पर समय व शक्ति यूज नहीं करनी पड़ती इसलिए सेवा के लिए तीव्र गति है, और तीसरा कर्तव्य विनाशी साधनों के आधार ना होने के कारण संकल्प की तीसरी गति। इसमें बाबा ने कहा है ना इसके पहले कि
व्यक्त शरीर में ये तीन बातें करनी पड़ती है। जब शरीर लेते हैं तो तीन बातें करते हैं, स्वयं के प्रति टाइम देना पड़ता है, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, तीनों में ही समय देना पड़ता है, और कर्म भोग के प्रति भी समय प्रति समय टाइम देना पड़ता है, विश्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। पर अभी तो शरीर ही नहीं है तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो टाइम देने का काम नहीं। ये तीन, तो यहां पर अव्यक्त ब्रह्म के ये तीन पार्ट में क्या है, पहला साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता है, ना तेल लगाओ, ना बाल बनाओ, ना नहाओ, सूक्ष्म वतन में नहाना नहीं है, वो सब नहीं है, भोजन नहीं है, टाइम वेस्ट से मुक्त, बफेलो जोन से परमानेंट मुक्त, जीरो बफेलो जोन, सीधा लायन जोन के भी ऊपर का जोन है वो। स्वयं के प्रति शक्तियां नहीं यूज करनी पड़ती, कुछ नहीं, कोई कर्म भोग नहीं कर्म का, ये तीन बातें। अभी स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पाठ, अब ये ब्रह्मा के लिए पांच बातें स्थापना के कार्य में। पहली पॉइंट, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंधा हुआ है, लास्ट तक ब्रह्मा ही एकमात्र रथ है, ब्रह्मा ही एकमात्र, बाबा की पदरामणी केवल ब्रह्मा के ही पाठ में होगी और किसी के पाठ में नहीं, और किसी के शरीर में नहीं। पहला, अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। दूसरा पॉइंट, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न है, क्या ब्रह्मा का पाठ समाप्त हो गया? नहीं हुआ, ब्रह्मा अभी भी उसका पाठ पूरा कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित कहां पर है? परम सूक्ष्म वतन में है। तीसरी पॉइंट, जब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकता, अर्थात ब्रह्मा पुनर्जन्म नहीं लेगा कि ब्रह्मा का जन्म हो गया है, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होता है, नो रिबर्थ। चौथा पाठ, जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नोंदा हुआ है, नए जगत की रचना इसी के द्वारा, जगत पिता के साथ, वो जगत पिता है। पांचवा, सृष्टि, मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अर्थात ये जितने धर्म स्थापक आके गए, बुद्ध महावीर एक साथ आए, एक तरफ बुद्ध भी थे एक तरफ महावीर भी थे, उन दोनों के भी परम पिता कौन है? ग्रैंडफादर ब्रह्मा, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक देव जी, ये जितने भी धर्म स्थापक आए हैं, ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही है। छठवां पॉइंट, सिर्फ स्थिति स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है, जो यहां वो काम कर रहा था बस वहां कर रहा, यहां शरीर के साथ कर रहा था वहां बिना शरीर के कर रहा, यहां उसकी लिमिट थी, उसको शरीर से जाना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, शरीर के भी हिसाब थे, अब वहां उसके शरीर के हिसाब नहीं है, उसके पुनर्जन्म नहीं है, और वहां संकल्प से काम करता है वो। उसकी इसमें भी कहा है बाबा ने, एक शब्द बोला है स्पीड के लिए, सुपर स्पीड क्या बोला है? क्विक स्पीड, क्विक स्पीड, दो बार आया है मुरली में ये शब्द। इसके लिए अगर सेवा फास्ट करनी है तो क्या करो? शरीर से अलग हो जाओ, शरीर छोड़कर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर से ज्यादा सेवा हो सकती है। एक ही जगह बैठे हैं परंतु सूक्ष्म शरीर सबकी मैत्री किरणें फैला रहे हैं, सूक्ष्म शुभ भावनाओं की किरणें फैलाते रहो। ये हो गया छह बातें। अभी आ जाओ ब्रह्मा के संपूर्ण अवस्था का वर्णन, सिक्स पावरफुल पॉइंट्स, ये तो याद कर लेनी है, कल भी कहा था 12 सिद्धियां याद होनी चाहिए। सबसे पहला, ब्रह्मा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको याद कर लेना है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, तो ब्रह्मा क्या है? कर्म बंधन है ही नहीं अब उसको, हम सबके पास कर्म बंधन है, उसके पास कर्म बंधन नहीं है, यहां के कर्म बंधन तो उसके पूरे खत्म हो चुके। दूसरा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र से मुक्त, वो ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। पहला तो कर्म बंधन से मुक्त, दूसरा जन्म मरण से मुक्त, तीसरा निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, जो परमात्मा की फर्स्ट नंबर की साथी आत्मा कौन है? ब्रह्मा। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, चौथा विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हुई फर्स्ट आत्मा, तो इस सृष्टि का सबसे पहला निमित्त कौन है? कल्याण का, ब्रह्मा। बौद्ध धर्म है जो ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को, पर उसमें भी शब्द विहार है, अशब्द है ब्रह्म विहार, और ब्रह्म विहार की अवस्था को कहा गया उसमें वो चार बातें हैं, उपेक्षा, मैत्री और दो बातें करुणा और उपेक्षा मैत्री करुणा और चौथी है भूल गए, बताया था एक बार, नहीं नहीं उपेक्षा मैत्री करुणा और एक चौथी एक बात नहीं एक बात और है उसमें ढूंढ लो ब्रह्म विहार। अब उस धर्म में भी ब्रह्मा का वर्णन है, नहीं तो ब्रह्मा का तो काम ही नहीं है, वो तो ना आत्मा के प्रति और परमात्मा के प्रति साइलेंट है पूरा। इसलिए ब्रह्मा कौन है, इस सृष्टि की पहली आत्मा जिसने भी मुदिता, हाँ प्रसन्नता मुदिता, तो अनंत मुदिता, अनंत करुणा, अनंत उपेक्षा और अनंत मैत्री, ये चार जब चीजें एक चीज एक साथ हो जाती है तब उसे ब्रह्म विहार की अवस्था कहा गया है। उपेक्षा अर्थात वो हम जिस उपेक्षा शब्द का अभी हिंदी भाषा में प्रयोग है वो नहीं, उपेक्षा अर्थात अनासक्त निरासक्त समानता की अवस्था को उपेक्षा कहा जाता। फिर अनंत करुणा, अनंत करुणा से जो भरा हुआ है, अनंत मैत्री भाव से भरा हुआ है, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, मैत्री की तरंग है, और अनंत मुदिता अर्थात प्रसन्नता। तो ये एक, फिर पांचवा स्वयं प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो ब्रह्मा के पास नहीं है। अब इसलिए बाबा ने एक लाइन और कही है, उसके पहले ये छठवां पॉइंट ले लेते, जहां चाहो और जितना समय चाहो वह वहां स्वतंत्र रूप से पाठ बजा सकता है। ये भी प्रश्न पूछते हैं ना, ब्रह्मा का पाठ कब तक, और ब्रह्मा सूक्ष्मवतन में अब तक क्या कर रहा है और कब तक करेगा, उसको ये छूट किसने दे दी है वहां इतना समय रहने की, परमिशन परमिट कार्ड, उसको ये परमिशन कहां से मिली। तो उत्तर है, जब अल्पकाल की सिद्ध प्राप्ति की हुई आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती है, तो क्या ब्रह्मा नहीं कर सकती। तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती। फिर भी ड्रामा को घुसेड़ दिया बीच में, यही तो गोल गोल है सारा खेल, बीच में से बाबा ने ड्रामा को ढाल की तरह प्रयोग किया है। बाबा ने तीन काल्पनिक चीजें खड़ी की है, पहला माया, ये माया थोड़ी ना कोई है, माया कोई व्यक्ति है क्या, ये खड़ी की है उसने, तीसरा दूसरा ड्रामा और तीसरा कुदरत। ये क्या है, कुदरत, ये सृष्टि कैसे रची, ये कुदरत है, ये पत्थर लाल लाल गोल गोल कैसे हो गया, वो आता है ना मुरली में गोल गोल हो गया वो शिवलिंग, कैसे, बाबा कहते कुदरत, कुदरत माया और ड्रामा, इससे बाबा को बहुत राहत मिली है, नहीं तो लोग पागल कर दिए होते भगवान को, हमारा भी कर दो हमारा भी कर दो, बाबा कहते ड्रामा अनुसार हुआ मैं थोड़ी करता हूँ, इसी आधार से वो भी कहा है साक्षात्कार ड्रामा द्वारा होते मैं थोड़ी करता हूँ अपने को पहले गुरु जो होता है ना स्मार्ट गुरु, पहले तो अपनी सेफ्टी देखता है कि नहीं तो ये लोग मुझे पागल कर देंगे इसलिए पहले उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बातें खड़ी करके रखी। सृष्टि को कैसे रचा, तुमने क्यों रचा, ये 5000 साल का ही क्यों है, ड्रामा अनुसार है, मैं थोड़ी ना किया, ये 5-6 हजार साल का क्यों नहीं है, डायनासोर कहाँ चले गए, वो तो दिखाई नहीं देते, वन डे से निकलते थे या डायरेक्ट आते थे, सतयुग में डायनासोर थे क्या, ये जो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी वापस कैसे तैयार हो जाएगी, ये घर गिर गया वापस कैसे खड़े हो जाएगा, ड्रामा 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 अनुसार होगा। तो ये बात, तो हाँ इस दुनिया में आत्मा को क्यों जन्म लेना पड़ता है, इसका कारण बताओ, परम धाम से आत्मा को सतयुग में क्यों आना पड़ता है, चार कारण है, परम धाम से आत्मा को धरती पर क्यों आना पड़ता है। जो बहने कोर्स कराती है उसमें वो कहानी सुनाती है ना, बच्चे खेल रहे थे नीचे, फिर उसकी मम्मी ऊपर चौथे मंजिल पर है, फिर मम्मी कहती है आओ आओ बेटा, वो कहते हैं नहीं नहीं मम्मी मुझे खेलना है मुझे खेलना है, फिर वो कहती है थोड़ी देर के बाद फिर आती है अभी आ जाओ, वो तो बच्चा कहते नहीं नहीं मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, मम्मी फिर कहती है फिर आओ, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, फिर एकदम ही मैला जब होता है तो मम्मी उसको बुलाती नहीं है, आके उसको कॉलर पकड़ के ले जाती है ऊपर और फिर उसको अच्छे से नहलाती धुलाती है और फिर कहती है अभी नीचे मत जाना। वो कहते हैं अभी नहीं जाऊंगा, वो तो बहुत गंदा है, ऊपर से वो भी देखता है इतना गंदा। फिर थोड़ी देर के बाद जब ऊपर ज्यादा रहता है वो घर पे, तब उसको ही अंदर से आता है कि जाऊं जाऊं, कब जाके खेलू कब जाके खेलू, मेरे दोस्त आ गए होंगे, कम ऑन लेट्स प्ले ऑन अर्थ। एक चित्र बनाया था किसी ने बहुत सुंदर, परमधाम, एक झूला, एक छोटी सी लड़की झूले पे और यहां धरती, कम ऑन लेट्स प्ले ऑन अर्थ, कम ऑन लेट्स प्ले ऑन अर्थ। तो चार कारण है इस धरती पर आत्मा क्यों आती है। पहला, कर्मों का बंधन। दूसरा, संबंध का बंधन। कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं जाना है सृष्टि, धरती अच्छी नहीं है, धरती ये बहुत ही लोग खराब है वहां, और वापस सतयुग त्रेता तक तो ठीक है, बाद में वापस द्वापर में गिरो और फिर ना ना ना, मुझे जाना ही नहीं है। और ऐसी अगर किसकी इच्छा है ना, वो भी पूरी होगी, वो लास्ट तक वहीं रहेगी, खा खा केवल लास्ट में आएगी थोड़ा सा पार्ट और वापस ऊपर। ऐसी भी कुछ आत्मा है। परमधाम खाली, अभी अगला प्रश्न है, परमधाम खाली हो गया क्या? है दो तीन आत्मा वहां वो आएगी लास्ट में एकदम विनाश के समय, आए पार्ट प्ले किया और गया, और छोटी बहुत ही कम स्टेज में एक ही जन्म में सतयुग त्रेता द्वापर का त्रेता का अनुभव करेगी, सतयुग त्रेता द्वापर सतो रजो तमो का एक ही जन्म में अत्यंत खुश और फिर द्वाप रजोगुण और सीधा तमोगुण, एक ही जन्म में तीनों चारों अनुभव करके बाय बाय। तीसरा, सृष्टि के पार्ट का बंधन। पहला कर्म का बंधन है, दूसरा संबंध का बंधन है, सृष्टि के पार्ट का बंधन, और चौथा देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षण करता है, आकर्षण होता है। बच्चे को लगता है मैं क्या कर रहा हूं, वो सिंधुबाद की स्टोरी सुनी है ना, सिंधुबाद सुना है, सिंधुबाद समुद्र का यात्री, बार बार समुद्र में 7 बार समुद्र की यात्रा की पहले जाता है, बहुत बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें और बहुत पैसा कमा के लेके आता है, फिर सोचता है अभी मैं नहीं जाऊंगा कभी भी ना, बहुत मुश्किल है, कई बार तो जान जाते जाते बची, पर रहने के बाद शांति से रहने के बाद फिर अंदर से उठता है कि फिर जाऊं फिर जाऊं, फिर जाता है, फिर सोचता है अगली बार नहीं जाऊंगा, फिर जाता है, अगली बार सोचता है अब नहीं जाऊंगा, 7 बार यात्रा करता है सिंधुबाद की यात्रा। तो यहां पर भी आत्मा ऊपर तो चली जाती है, परंतु कर्मों के बंधन, संबंधों के बंधन, शरीर के बंधन, पार्ट का बंधन, ये चारों चीजें उसे खींचती है और आत्मा घसीटती हुई नीचे नीचे आती है, और जब बहुत दुखी हो जाती है तो फिर पुकारती है प्रभु उठा ले, हे प्रभु उठा ले। तो ये मुरली में और भी कुछ बातें हैं, पर अभी टाइम पूरा हो रहा है इसलिए इसको छोड़ते हैं, बाकी ये रहस्यपूर्ण मुरली। और आज होमवर्क नंबर 1, ब्रह्मा के कौन कौन से नाम है वो सारे नामों की लिस्ट लिखनी है, ब्रह्मा के नामों की लिस्ट। होमवर्क नंबर 2, सूक्ष्म वतन पर एक कॉमेंट्री बनानी है ऑडियो, 2 मिनट की, ज्यादा लंबी नहीं बनानी, 5-5 मिनट की, अभी वतन पहुंची ये किया वो किया इधर लाइट उधर लाइट ये लाइट वो सब नहीं, 2 मिनट की कॉमेंट्री, ये दूसरा होमवर्क। और तीसरा ये सारे 3-4 जो पॉइंट्स है, और वो जो मुरली स्टडी करने को कहा 2269 की मुरली स्टडी, तो आज 74 की सारी अव्यक्त वाणियां पूरी होगी, 7 पर आपने एग्जाम दे दी है, बची है क्या और कुछ, बीच में ले ली थी ना, चलो वो कर ले लेंगे, हमको लगा हम तो बहुत ही खुश हो गए थे कि हो गया काम पूरा अच्छा यू निकल पड़ा हूँ सफर पे मैं, मुझे मंजिलों की तलाश है, नए रास्ते नए आसमान नए हौसलों की तलाश है, जहां बंदिशों की वो हद खत्म उस हसी शहर की तलाश है। सूक्ष्म वतन वो एक समानांतर दुनिया है, ये जैसी दुनिया है वैसी वो एक दुनिया है, इसलिए उसका भी अनुभव यहाँ करना है, जहां रंग और खुशबू का हो मिलन, मुझे उस उफक की तलाश है, उस होराइजन की, उस सितिश की। ओम शांति।